नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पंजाब और हरियाणा की सीमा पर शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए भीषण मोर्चा बांधा गया है, तो किसानों ने भी यहां मोर्चा संभाल लिया है। ड्रोन के इस्तेमाल से किसानों पर आंसू गैस के गोले गिराए जा रहे हैं, तो किसानों ने भी ड्रोन को फंसाने के लिए, रोकने के लिए पतंगों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पतंग से ड्रोन को घेरना शुरू किया है। सरकार और किसान में यही फर्क है। सरकार टेक्नोलॉजी के सहारे अपना तरीका बदलती है, किसान अपने दिमाग और हुनर के दम पर मुकाबला करते हैं। यह वीडियो शंभू बॉर्डर का है। आप देख सकते हैं कि किसानों ने पतंग की डोरी से ड्रोन का काट निकालने की कोशिश की है। हरियाणा की तरफ से आने वाले ड्रोन ने पहले दिन किसानों पर खूब आंसू गैस के गोले बरसाए, लेकिन पंजाब की तरफ से किसानों ने जल्दी ही उपाय निकाल लिया और अब आंसू गैस के धुओं के बीच उनकी पतंगे ड्रोन को फंसाने के लिए खोज रही हैं। किसानों के इस आइडिया ने आज ड्रोन चलाने वालों को उलझन में डाला होगा। पतंगों से किसानों को कितनी कामयाबी मिली है, इसकी आधिकारिक सूचना हमारे पास नहीं है। इसके बाद भी खबरें मिलती रहीं कि आंसू गैस के गोले दागे जाते रहे। यही नहीं, इस ट्रैक्टर पर पानी का टैंक लगाया गया है। जैसे ही आंसू गैस के आने का अंदाजा लगता है, छोड़े जाते हैं, ट्रैक्टर टैंकर लेकर चल पड़ता है, पानी का छिड़काव करता है। पानी की बौछारों से आंसू गैस के गोले को बुझाने का प्रयास करता है। किसानों ने चश्मे पहन लिए हैं और आंसू गैस का असर कम करने के लिए इनो और नमक का भी सेवन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में गीली बोरियां लाई गई हैं। इस तरह से आंसू गैस के असर को कम करने और रोकने के लिए किसानों ने अपने हुनर के दम पर सबको चौंका दिया। इस रचनात्मकता पर पुलिस भी मुस्कुरा रही होगी। पुलिस ने भी नहीं सोचा होगा कि जिस ड्रोन से वे किसानों पर हमले कर रहे हैं, किसानों के पास उसे रोकने का बेहद सस्ता और कारगर उपाय निकल आएगा। हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से किसानों के खिलाफ पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, रबर की गोलियों का इस्तेमाल हुआ है। मीडिया में कई जगह रिपोर्ट में इस बात पर हैरानी जताई जा रही है कि पुलिस के पास ड्रोन कब से आया। इस सवाल को लेकर इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू की रिपोर्ट में काफी कुछ जानकारी मिलती है। इंडियन एक्सप्रेस में वरिंदर भाटिया और द हिंदू में विजेता सिंह ने रिपोर्ट फाइल की है। वे बता रहे हैं कि यह पहली बार हुआ है कि देश में कोई सरकार नागरिकों के प्रदर्शन पर ड्रोन से अश्रु गैस के गोले गिरा रही है। शंभू बॉर्डर पर अर्धसैनिक बलों की टीयर स्मोक यूनिट ने इन ड्रोनों से कई गोले किसानों के ऊपर गिराए हैं। इन ड्रोनों का निर्माण ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड दृश्य ने किया है। इनका उपयोग पाकिस्तान बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के सर्वे के लिए, फसलों की निगरानी के लिए किया जाता है। अब पहली बार किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए किया जा रहा है। इन ड्रोनों को BSF की एक बैठक में पहली बार सामने रखा गया। उसी में बताया गया कि कानून व्यवस्था को काबू करने में ये मदद कर सकते हैं। विजेता सिंह लिखती हैं कि अभी तक किसी राज्य की पुलिस को इन्हें नहीं दिया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि मुमकिन है कि हरियाणा ने किसी निजी विक्रेता से स्मोक लॉन्चर हासिल कर लिया हो। एक्सप्रेस के वरिंदर भाटिया से हरियाणा पुलिस के सूत्रों ने कहा है कि ड्रोन को अर्धसैनिक बलों ने चलाया है। किसानों ने कहा है कि ड्रोन बार बार उड़कर आते रहे और देर शाम तक आंसू गैस के हमले करते रहे। पंप गन के उलट ये ड्रोन एक बार में कई ग्रेनेड गिरा सकते हैं। लॉन्च को रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। शंभू बॉर्डर पर अर्धसैनिक बल पहली पंक्ति में है, उसके बाद हरियाणा पुलिस की तैनाती है, ताकि अगर किसान पहली पंक्ति पार कर भी गए तो पुलिस उन्हें रोक सके। पत्रकार विजेता सिंह ने यह सवाल उठाया है कि अभी तक किसी भी राज्य की पुलिस को ड्रोन नहीं दिया गया है, तो क्या हरियाणा की तरफ से ड्रोन का इस्तेमाल आधिकारिक है या नहीं है? ड्रोन के जरिए किसानों को, किसान नेताओं को या उनके ट्रैक्टर ट्रॉली को खास तरीके से टारगेट किया जा सकता है। 13 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर 100 से अधिक किसानों के घायल होने का दावा किया जा रहा है। पुलिस ने भी कहा है कि उसके भी 2 दर्जन से अधिक जवान और अधिकारी घायल हुए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि 13 फरवरी को गोलियां चली हैं और एक्सपायर हो चुके आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि बड़ी संख्या में किसानों को हरियाणा से उठाया गया है।
जिस तरह से आपने देखा है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार हमारे ऊपर जबर कर रही है, ये बुलेट SLR की बुलेट चलाई गई हमारे ऊपर, इस तरह से हंजू गैस जो हमारे ऊपर नहीं चलाना चाहिए, ये प्लास्टिक की गोलियां उन्होंने इस्तेमाल की और ये रबड़ की गोलियां ये हमारे ऊपर हो रहा।
13 फरवरी को बीजेपी पूरे दिन अपने ट्विटर हैंडल से किसानों को लेकर मोदी सरकार की योजनाओं के दावे का पोस्टर ट्वीट करती रही। मतलब जिस दिन किसान कह रहे हैं एमएसपी नहीं मिलती है इसकी गारंटी दीजिए, उसी दिन बीजेपी पोस्टर जारी करती है कि यूपीए से ज्यादा एमएसपी दी है। 13 फरवरी को किसानों पर ड्रोन उड़ाकर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। चारों तरफ जब ड्रोन के इस्तेमाल की खबर फैलने लगी तो बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया जाता है और बीजेपी के इस पोस्टर पर लिखा है, किसान ड्रोन नया मेल परंपरा और तकनीक का, किसान ड्रोनों ने बदला खेती का तरीका। जिस समय किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिर रहे हों उसी समय बीजेपी का यह पोस्टर किसान ड्रोन की खुशखबरी सुना रहा था कि किसान ड्रोन ने खेती का तरीका बदल दिया है। क्या आपको नहीं दिखा कि किसान ड्रोन के मुकाबले एक और ड्रोन है जिसने बता दिया है कि किसानों के प्रति सरकार का नजरिया अब कितना बदल गया है। तो आपने देखा कि एक तरफ किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले गिराए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी किसान ड्रोन का पोस्टर जारी करती है, इससे किसानों की तरक्की हो रही है बता रही है। संयुक्त किसान मोर्चा इस बार इस आंदोलन के साथ नहीं है, मगर उनका बयान आया है कि शंभू बॉर्डर पर किसानों का जिस तरह से दमन हो रहा है उसकी निंदा करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि किसान आंदोलन एकजुट होकर लोकतांत्रिक अधिकारों पर किसी भी हमले का प्रतिरोध करेगा। अपने बयान में संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान संगठनों को रोकने के लिए राज्य शक्ति के अति प्रयोग और लाठीचार्ज, रबर बुलेट, आंसू गैस के गोले और सामूहिक गिरफ्तारी का सहारा लेने के लिए मोदी सरकार का कड़ा विरोध और निंदा की है। कहा है कि आश्चर्य की बात है कि प्रशासन द्वारा किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। एसकेएम ने मोदी सरकार को चेतावनी दी है कि अपने वाजिब मांगों को लेकर सड़क पर उतरने को मजबूर लोगों के साथ सरकार या देश के दुश्मन जैसा व्यवहार ना करें। संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को अपने पाले के तमाम संगठनों के साथ पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। कहा है कि सभी समान विचारधारा वाले किसान संगठन सामान्य मुद्दों के आधार पर संघर्ष की तैयारी में आगे आए।
हमारा सरकार से कहना है कि सरकार संयम बरते, इस तरह से किसानों के ऊपर ज्यादती ना करे। ये कोई विदेशी किसान नहीं है, कोई ये सीमा का बॉर्डर नहीं है जहां पे इस तरह का व्यवहार किसानों से किया जा रहा है। तो हमारा सरकार से कहना है कि सरकार संयम बरते और सरकार इस तरह से ना उकसाए कि फिर कोई अगला कोई कदम ऐसा हो जो फिर सरकार को संभालना मुश्किल हो जाए। और ये जो मैटर है ये बातचीत से सुलटाना चाहिए, क्योंकि जो मांगे हैं वो मांगे पूरे देश के किसानों की हैं और सही हैं। कोई मांगे गलत नहीं है, कोई वो ऐसा नहीं मांग रहे कि जिससे कोई देश उजड़ रहा हो या कोई अपने स्वार्थ में मांग रहे हो। किसानों की मांगे हैं, किसानों की मांगों पर के ऊपर सरकार को सौहार्दपूर्ण व्यवहार से बातचीत करके बातचीत के माध्यम से निपटाना चाहिए और ये मांगे माननी चाहिए, सारी सही हैं। और इस तरह से व्यवहार जैसे कोई विदेशी हो, जैसे कोई हम सीमा पे खड़े हो, इस तरफ फोर्स खड़ी है दूसरी तरफ किसान खड़ी है, घोड़े पे घोड़े दाग रहे हैं, ये व्यवहार जो है ये बिल्कुल गलत है और हम जो है वो किसानों के साथ में है। तो सरकार इस तरह का व्यवहार ना करे और सही तरीके से बात करे, सही तरीके से निपटाए, सही तरीके से मांगे माने। जो पीछे भी सरकार ने वादे किए थे उनसे ही मुकरी है, जो बिल्कुल गलत है और हम पूरी तरह से देश के किसानों के साथ में हैं।
शंभू बॉर्डर पर क्या चल रहा है, खन्नौरी नाका पर क्या हुआ, इसे लेकर खबरें कम आने लगी हैं। इंटरनेट इस तरह से बंद किया गया है कि बहुत मुश्किल से वीडियो आ पा रहे हैं, सामान्य कॉल करना भी मुश्किल होता जा रहा है। वीडियो भेजने के लिए पत्रकारों को 20-20 किलोमीटर भागना पड़ रहा है। आज भी सरकार की तरफ से ट्विटर के अकाउंट बंद किए जाने की खबर आई है। किसान नेताओं के ट्विटर अकाउंट बंद किए गए, अब पत्रकार मनदीप पुनिया का भी ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया है। मनदीप की वेबसाइट गांव सवेरा का पोर्टल बंद कर दिया गया, उसका अकाउंट, उनका पर्सनल अकाउंट भी बंद है। जो मौके पर है वही खबर नहीं भेज पाएगा। गोदी मीडिया खबरों को पहुंचने नहीं देता और स्वतंत्र पत्रकारों को इस तरह से रोका जा रहा है। इसका मतलब है कि सरकार तेजी से YouTube और Facebook पर रिपोर्ट कर रहे चैनलों की तरफ भी बढ़ेगी। कई नए पत्रकार जान जोखिम में डालकर शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अकाउंट और पोर्टल बंद करना केवल अभिव्यक्ति पर हमला नहीं है, पत्रकार की आजीविका पर भी हमला है। सोचिए यह कितनी गलत बात है। किसी का YouTube बंद होगा, किसी का पोर्टल बंद होगा, उसकी आजीविका बंद होगी, उसे भूखा रखा जा रहा है ताकि आपको भी सूचनाओं को लेकर भूखा रखा जा सके। अगर इस तरह से पत्रकारों को रोकने की कोशिश होगी तब खबरों के आने की बची खुची उम्मीदें भी समाप्त हो जाएंगी। क्या इस देश में गोदी मीडिया ही बचा रह जाएगा? अब मीडिया भी इस पर चुप रह जाता है। रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों के अकाउंट बंद किए जा रहे हैं तो उसी ट्विटर पर किसानों को खालिस्तानी बताने का जबरदस्त अभियान चलाया जा रहा है। इस तरह के ट्वीट्स में लिखा जा रहा है कि खालिस्तानियों के जत्थे दिल्ली की ओर आ रहे हैं, इन एंटी नेशनल तत्वों के खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, खालिस्तानियों को किसी का कोई समर्थन नहीं मिलना चाहिए। किसानों की तैयारी के वीडियो ट्वीट करके लिखा जा रहा है कि इसके लिए कौन पैसे दे रहा है। साफ है कि खालिस्तानी काम कर रहे हैं, ना कि किसान। आंदोलन के पाकिस्तान फंडिंग की बात भी की जा रही है। बेबुनियाद दावे किए जा रहे हैं कि यह आंदोलन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित है, जबकि किसान खुद कह रहे हैं कि वो किसी के साथ नहीं। इसी तरह संसद हमले के आरोपियों को विपक्ष और कांग्रेस से जोड़ा जाने लगा। अभी तक इसकी जांच कहां पहुंची है कुछ जानकारी नहीं। नवंबर 2020 में जब किसान दिल्ली आए तब भी यही सिलसिला चला, इस बार भी जारी है। पता चल रहा है कि सरकार की नजर में किसानों की क्या हैसियत रह गई है और जनता के एक वर्ग में भी किसानों के प्रति लोगों का नजरिया खराब किया जा चुका है।
जिस तरह से हमारी परसेप्शन बनाई जा रही मीडिया में, खालिस्तान का अटैक लगाया जा रहा, प्रो लेफ्ट बोला जा रहा है, प्रो कांग्रेस बोला जा रहा है और प्रो पंजाब सरकार बोला जा रहा है, अभी ये उत्साहित कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम तो ये कहते हैं भी जो देश में नीतियां लागू है कांग्रेस लेके आने वाली, और सीपीएम सीपीआई सीपीएम का राज पश्चिमी बंगाल में 35 साल रहा, उनका और अन्य राज्यों का हमको अधिक फर्क नहीं समझते हैं। तो हम जैसे हम सब सरकारों की आलोचना करते हैं, आम आदमी भगवंत मान सरकार की भी वैसी आलोचना करते हैं। हमसे किसी का कोई लेना देना नहीं, हम देश के किसान हैं, खेत मजदूर हैं और अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं।
इस तरह से किसानों का दिल्ली पहुंचना अब मुमकिन नजर नहीं आता है, बातचीत के सफल होने के आसार भी नजर नहीं आते। 15 फरवरी को भारतीय किसान यूनियन उग्राह ने पंजाब में रेल रोको का आह्वान किया है और उसके अगले दिन संयुक्त किसान मोर्चा और तमाम मजदूर संगठन भी एक नए तरह का आंदोलन करेंगे। उस आंदोलन का स्वरूप क्या होगा इसका अंदाजा अभी नहीं है। सरकार ने किसानों से बात करना बंद नहीं किया है और इतना सब होने के बाद भी किसान सरकार से बात कर रहे हैं। इस बीच कुरुक्षेत्र के पास शाहबाद में कीले गाड़ी जा रही हैं, ये कीले नहीं हैं बल्कि सरिया की नोक हैं। जिन मजदूरों के हक की बात किसान और मजदूर कर रहे हैं उन्हीं मजदूरों से सड़कों पर कीले और तारे बिछवाई जा रही हैं। इससे पता चलता है कि सरकार बातचीत के नाकाम होने को लेकर कितना आश्वस्त है। उसे अंदाजा हो गया होगा कि बातचीत फेल होनी है तो किसान मार्च करने पर जोर देंगे, तब यही कीले और सीमेंट की दीवारें काम आएंगी। एक तरह से सरकार पहले से ही पोजीशन ले रही है। अगर आंदोलन शुरू होने के पहले बातचीत शुरू हो गई तब सरकार को एमएसपी के ऊपर कुछ ठोस प्रस्ताव देने चाहिए थे। किसान आंदोलन को रोकने के नाम पर भारत में बैरिकेड का तरीका पूरी तरह बदल गया है। बैरिकेड लगाने का अपना एक इतिहास है। यह कब और कहां से शुरू हुआ पहली बार टाइप के सवालों का दावा हम नहीं करते, मगर 1830 के दशक में यूरोप के कई देशों में बैरिकेडिंग काफी फैल गई थी। तब पुलिस और सेना बैरिकेड नहीं लगाती थी, जिस तरह से आज के समय में पुलिस सड़कों को खोदकर, कीले गाड़कर और सीमेंट की दीवारें खड़ी कर बैरिकेड लगा रही है, यही तो फर्क आया है। मगर 1830 के यूरोप में जनता बैरिकेड लगाया करती थी ताकि पुलिस और राजशाही की सेना उसके मोहल्लों में घुस ना आए। वो बैरिकेड के सहारे आगे बढ़ा करती थी और राजशाही को चुनौती देती थी। बैरिकेड लगाने के लिए लोग अपने घर की टूटी कुर्सियां, पलंग, दरवाजे ले आया करते थे, उसके पीछे हथियार लेकर पुलिस और सेना का मुकाबला करते थे। तब लोग बैरिकेड के उस पार हमला करने के लिए तैयार पुलिस और सेना से आह्वान करते थे कि तुम उस तरफ क्यों हो, तुम्हारी जगह तो हम जनता के बीच हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि पुलिस और सेना के लोग बैरिकेड तोड़कर उस तरफ चले गए जिस तरफ जनता थी और जनता से जाकर मिल जाते थे। कई जगहों पर इस कारण क्रांति सफल हुई। 1830 के दशक में पुर्तगाल, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली में क्रांति हुई, कहीं कहीं असफल भी हुई। विक्टर हुगो का एक मशहूर उपन्यास ले मिजराबल है, इस पर फिल्म भी बनी है। यूट्यूब पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म में आपको दिखेगा कि जनता कैसे बैरिकेड लगाती है। भारत की वामपंथी राजनीति में एक प्रचलित नारा है, प्रतिवाद प्रतिरोध के लिए कॉमरेड, खड़ा करो बैरिकेड। यानी बैरिकेड का मतलब यही है कि जनता और कॉमरेड बैरिकेड खड़ी करेंगे, पुलिस और सेना नहीं। अब बैरिकेड का मतलब बदल गया है, बैरिकेड पुलिस लगाती है। इसकी रणनीति और इसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें भी बदल गईं। किसानों को रोकने के लिए सरकार ने बैरिकेडिंग के सारे मानक बदल दिए। रास्तों को खोद दिया गया, कीले गाड़ दी गई, कटीली तारें लगा दी गई, दीवारें खड़ी कर दी गई। 2020 में ही जब किसान दिल्ली आए तब साफ हो गया कि यहां से किसान और सरकार के संबंध बदल जाते हैं। किसानों को अन्नदाता तो कहा जाएगा मगर तभी तक जब तक वे चुप रहेंगे और सब कुछ सहते रहेंगे। जैसे ही बोलेंगे ट्विटर पर उन्हें खालिस्तानी कहा जाने लगेगा। मोदी सरकार के 10 साल के दौर में किसान ही हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते रहे हैं। 2017 में दिल्ली में तमिलनाडु के किसानों ने लगातार प्रदर्शन किया, सड़क पर अनाज रख दिया, वहीं भोजन किया, नंगे बदन हो गए। 107 दिनों तक दिल्ली में उन्होंने प्रदर्शन किया था। 2018 में महाराष्ट्र में हजारों किसानों ने लॉन्ग मार्च किया मुंबई तक आए। 2018 में देश भर के किसान दिल्ली में जमा हुए। 2020-21 में दिल्ली की सीमाओं पर किसान एक साल तक बैठे रहे। मार्च 2023 में किसानों ने महाराष्ट्र में फिर से लॉन्ग मार्च किया मगर बीच से ही वापस हो गए। इन सभी में किसानों की मांगें मिलती जुलती रही हैं मगर तब भी किसानों की मांगों को लेकर ठोस समाधान नहीं निकाला गया। दरअसल अब वोट का इंतजाम हो चुका है। भारत की राजनीति में इस तरह के आर्थिक मुद्दों की मौत हो चुकी है, एक ही मुद्दा बचा है, धर्म। इसके आगे अब जनता होना भी मुद्दा नहीं रहा। इसलिए इतनी कीलों, इतने कांटों को देखकर भी टीवी के सामने जनता बनने का ढोंग करने वाला मिडिल क्लास अब शांत है। हाउसिंग सोसाइटी की आंटियों और अंकिलों को अब कुछ भी इसमें गलत नहीं लगता। वो अब गलत बोलने की रस्म अदायगी भी नहीं करना चाहते। किसानों की जरूरत नहीं, उनके पुराने नेताओं के सम्मान से काम चल जाएगा। खेती का संकट अभी जारी रहेगा, बस अब किसानों के बीच से खबरें पहुंचाने का काम मुश्किल हो जाएगा। धर्म की राजनीति में सहयोग किसानों का भी रहा है। जब भी राजनीति में धर्म आता है, इसको लिखिए, पर्स में रखिए, जब भी राजनीति में धर्म आता है राजनीति खत्म हो जाती है, कबाड़ हो जाती है, लोकतंत्र का सत्यानाश हो जाता है और सजा सभी को बराबर मिलती है। जो उसमें शामिल हैं उनको भी और जो शामिल नहीं हैं उनको भी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।